الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نصفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو پچھلی کلاس میں ہم سورۃ المرسلات کی تفسیر پڑھ رہے تھے، معرف القرآن کے جلد نمبر 8 سے، اور اس میں معرف المسائل ہم نے تھوڑے سے پڑھ لیے تھے. شروع کی جو آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے قسمیں کھائی ہیں، تو ان کا ذکر ہم نے پڑھ لیا تھا. مختصراً یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کی قسمیں کھائی ہیں، جیسے کہ بہت سے دوسرے مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ مخلوق کی قسم کھا کر کے پھر اس کے بعد کوئی اہم بات بیان کیا کرتے ہیں. تو ہواؤں کی قسموں کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے. تین قسم کی ہوائیں، جو مرسلات ایک قسم ہوتی ہے، عاصفات ایک قسم ہوتی ہے، اور ناشرات ایک قسم ہوتی ہے ہواؤں کی. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی دو قسموں کی قسم کھائی، فارقات اور ملقیات. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا عذرن او نذرا. ٹھیک ہے، یہاں سے ہم نے پڑھنا تھا آج، پیج نمبر 646. عذرن او نذرن، تو اللہ رب العزت فرشتوں کی جو قسم کھاتے ہیں نا، ملقیات ذکرن عذرن او نذرن، تو یہ اسی سے متعلق ہے. فرماتے ہیں عذرن او نذرن، یہ ملقیات ذکرہ سے متعلق ہے، یعنی یہ اس سے کنیکٹڈ ہے، اس سے جوائنڈ ہے نا. یہی بات چل رہی ہے کہ یہ ذکر اور وحی انبیاء علیہ السلام پر اس لیے نازل کی جائے گی کہ وہ اہل حق مومنین کے لیے ان کی کوتاہیوں سے معذرت کا سبب بنے، اور اہل باطل کفار کے لیے نذیر اور عذاب سے ڈرانے والا ثابت ہو. ٹھیک ہے، یعنی فرشتوں کی قسم کھائی کہ یہ ملقیات ذکرہ ہے. ملقیات کا مطلب القا کرنے والے، ڈالنے والے. ٹھیک ہے، کوئی چیز ڈالی جاتی ہے نا جب کسی کے اندر، جیسے آپ پور کرتے ہیں، پورنگ کا جو لفظ ہے نا انگریزی کے اندر، گلاس کے اندر آپ نے پانی کو پور کر دیا، اس کو القا کرنا کہتے ہیں. تو کوئی بات کسی کے دل میں القا کر دی، ٹھیک ہے، اس کے لیے خاص طور پہ یہ لفظ روحانی دنیا میں بھی استعمال ہوتا ہے، القا کی کوئی بات، کوئی وحی یا کوئی الہام القا کر دیا، فیض القا کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ القا جو ہے وہ فرشتے انبیاء کے سینوں میں کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی تھے، ان کے بعد یہ وحی کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو یہ وحی کیوں القا کرتے تھے فرشتے، اللہ کے حکم سے کیوں کرتے تھے؟ وجہ بیان کری کہ جو ایمان والے، یعنی جو نبیوں کی بات مان لینے والے ہوتے تھے، ان کو ایمان والے کہتے ہیں، مومنین کہتے ہیں، تو ان کی کوتاہیوں سے معذرت کا سبب بنے. یعنی ان سے جو غلطیاں کوتاہیاں اس دنیا کی زندگی میں ہو گئی تھیں یا ہو رہی تھیں، تو ان سے وہ رجوع کر لیں، ان سے وہ معذرت کر لیں، ان سے اللہ تعالیٰ کی ان پر معافی مانگ لیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وحی کا کام کیا ہوتا ہے؟ وحی کا کام ہوتا ہے بشیر اور نذیر کرنا. بشیر کرنا کا مطلب ہوتا ہے کہ بشارت دینا، جو آپ اچھا کام کر رہے ہیں، پہلے سے جو اچھا کام کر رہے ہیں اس کے اوپر بشارت دینا کہ بھئی آپ کو اس کے اوپر بہترین انعامات ملیں گے. ٹھیک ہے، اور دوسرا کام وحی کا کیا ہوتا ہے؟ نذیر. نذیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ جو غلط کام کر رہے ہیں نا، یہ کام غلط ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، ایسے مت کیجئے. ٹھیک ہے، اس کی اصلاح کر لیجئے. ٹھیک ہے، تو جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ جب یہ باتیں سنتے ہیں तो वो अपनी इस्लाह कर लेते हैं, गलती पर माजरत कर लेते हैं, ठीक है, तो वही उनकी माजरत का सबब बन गई। और जब कोई माजरत करता है अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला उसकी माजरत को कबूल कर लेते हैं और माफ कर देते हैं उसको। लेकिन जो काफिर होते हैं, अहले बातिल, काफिर यानी नबी का इनकार करने वाले, नबी को नहीं मानने वाले, तो वो क्या करते हैं, वो नहीं मानते, वो माजरत नहीं करते, वो अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते, ठीक है। तो वही फिर उनके लिए क्या रोल प्ले कर रही होती है, वही उनके लिए डराने का रोल प्ले कर रही होती है, ठीक है, कि जो तुम जो 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 नहीं मान रहे हो ना, तो इसके ऊपर तुम्हें सजा मिलेगी, ठीक है। लेकिन उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो टस से मस नहीं होते, बात नहीं सुनते फिर भी। तो वही के दो पर्पजेस बयान किए, ठीक है, मानने वालों को कोताही से माजरत का सबब बन जाती है, और जो नहीं मानने वाले होते हैं उनको डराने का काम करती रहती है वही, ठीक है। तो दो बड़ी अहम बातें इससे सामने आती हैं हमारे, वो क्या कि देखें, अल्लाह ताला जो बात दुनिया में भेजते हैं ना अपनी, जिसको वही कहते हैं, तो ये जो है ना ऑडियंस के हिसाब से इसका अलग एक असर होता है। ऑडियंस, ऑडियंस वो लोग होते हैं कि जिनसे बात की जा रही है, ठीक है। तो जो मानने वाली ऑडियंस थी उनके ऊपर अलग असर हुआ, जो नहीं मानने वाली ऑडियंस थी उनके ऊपर एक अलग असर हुआ, ठीक है। अल्लाह ताला ने ऑडियंस के हिसाब से भी बात भेजी होती है, ठीक है, वही के अंदर दोनों बातें मौजूद है ना, बशारत वाला वाला भी अंसर मौजूद है। वो किस ऑडियंस के लिए है, जो मानने वाले उनके लिए बशारत वाला ऑडियंस यानी कंटेंट है कुरान मजीद के अंदर, वही के अंदर, ठीक है, कि भाई तुमने बात मान ली है, तुम्हें जन्नत की नहरें मिलेंगी, जन्नत के बागात मिलेंगे वगैरह। और जो दूसरी वाली ऑडियंस है ना मानने वाली, तो उनके लिए अलग बातें हैं कुरान मजीद के अंदर, कि तुम्हें ये यानी अजाब होगा और ऐसे तुम्हें मारा जाएगा और ऐसे किया जाएगा वगैरह। ऑडियंस के हिसाब से बात करनी जो होती है ना, वो फ़ायदा मंद होती है। और हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी अपने कुरान मजीद के असलूब के ज़रिए से हमें यही बात सिखाई है, ठीक है, कि अपनी ऑडियंस को देखो और उसके हिसाब से बात करो। ऐसी बात ना करो कि जिसका कि ऑडियंस से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ऑडियंस को कोई उसके मतलब ही समझ में नहीं आ रहे, ऑडियंस को जो है वो उससे कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, ना ना डरने का फ़ायदा हो रहा है, ना जो है वो खुश होने का फ़ायदा हो रहा है, बस तुम बात किए चले जा रहे हो और ऑडियंस के ऊपर कोई कोई उसको फ़ायदा नहीं हो रहा, ठीक है। तो फ़ायदा होना ज़रूरी है, चाहे वो डरने वाला फ़ायदा हो, चाहे वो खुश होने वाला फ़ायदा हो, लेकिन फ़ायदा होना जो है वो ये बात के अच्छे होने का ये दलील होती है कि सुनने वाले को कोई ना कोई फ़ायदा हो रहा हो, ठीक है। बहरहाल हवाओं या फरिश्तों या दोनों की कसम खाकर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नमा तुअदूना लवाकिअ, इन्नमा तुअदूना लवाकिअ, यानी तुमसे जिस कयामत और हिसाब किताब जजा व सजा का वादा बजरिया अंबिया किया जा रहा है वो जरूर पूरा और वाकई होकर रहेगा। इन्नमा का लफ्ज जो है ये जरूर बिल जरूर, बल्कि इसका तर्जुमा तो किया जाता है सिवाय इसके नहीं, इसके सिवाय कोई और चारा, कोई और सूरत ही नहीं है कि ये चीज हो के रहेगी, ठीक है। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी कि यही होना है कि तू अदूना लवाक़, कि वाक़ होने का जो वादा है वो पूरा हो करके रहे। आगे इसके वाक़ होने के वक्त के चंद हालात का जिक्र है, यानी जजा व सजा का जो वादा बजरिया अंबिया से किया जा रहा है वो पूरा होकर रहेगा। अब ये इसके जो पूरा होने के डिटेल्स जो है ना वो क्या है, तो यहाँ पर उसके यानी चार हालात जिक्र किए गए हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कयामत की बहुत सारी तफसीलात बयान करी हैं, ठीक है, इतनी तफसील से कयामत के बारे में किसी पिछली उम्मत को नहीं बताया गया था। जाहिर है क्यों नहीं बताया गया था, ज़रूरत नहीं थी, ठीक है ना। अल्लाह ताला वही काम करते हैं जिसकी ज़रूरत होती है, ठीक है, और जिसकी कोई हिकमत होती है, कोई वजह होती है। बग़ैर हिकमत के, बग़ैर वजह के अल्लाह ताला बात नहीं किया करते, ठीक है। फ़ेलुल हकीम, हकीमी ला यखलू अनिल हिकमा, हकीम का कोई फ़ेल हिकमत से खाली नहीं होता, हम जैसे बहुत सारी बातें फजूल में करते हैं ना, जिसका कोई मकसद नहीं होता, इसलिए क्योंकि हम हकीम नहीं है, हमारे अंदर हिकमत नहीं है, हमारे अंदर जो है वो अकल कम है बहुत, ठीक है, इस वजह से हम बेकार में बातें करते रहते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत तो कामिल है, तो अल्लाह ताला कोई बात बेकार नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से अगर पिछली उम्मतों को जितनी कयामत की तफसीरात बताई, वो इसीलिए बताई क्योंकि उनको उसकी ज़रूरत थी, और हमें जितनी ज़्यादा तफसीलात बताई हमें इसकी ज़रूरत है, ठीक है। अल्लाह ताला हमारी ज़रूरत से सबसे ज़्यादा वाकिफ़ है, बल्कि हमसे भी ज़्यादा हमारी ज़रूरतों से अल्लाह ताला वाकिफ़ है। तो कयामत के हालात बयान कर रहे हैं। सबसे पहला अव्वल ये कि सब सितारे बेनूर हो जाएंगे, यानी सितारों का जो नूर है, जो लाइट है, जो उनके अंदर से रोशनी निकल रही है, और इवन रोशनी के साथ साथ जो है वो गर्मी भी निकल रही है, क्योंकि सितारे अब तो मॉडर्न साइंस के जरिए से बहुत सारी चीजें जो है वो समझ ली गई हैं, या उनकी तफसील जो है वो बयान कर दी गई कि भाई ये जो जो सितारों की जो रोशनी है ना, तो ये कैसे क्रिएट होती है। तो अब एटलीस्ट हमारा जो सितारा है, जिसको सन कहते हैं, हमारे सोलर सिस्टम का जो सितारा है, तो उस तक तो चले भाई टेलीस्कोप्स वगैरह से जो है वो देख भी लिया गया है, ठीक है, कि वहां पर जो है वो बहुत सारा ईंधन है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, ये चीजें जो है ना वो बर्न हो रही है वहां पे, ठीक है, जल रही हैं, जैसे पेट्रोल बर्न होता है तो उससे फिर यानी एक एनर्जी क्रिएट होती है, आप लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी को जलाने से भी जो है वो रोशनी भी पैदा होती है और गर्मी भी पैदा होती है, उसी तरीके से वहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और इस तरह की जो चीजें जो जल रही हैं, तो इससे रोशनी और हरारत दोनों पैदा हो रही हैं। लेकिन एक कॉमन सेंस की भी बात है कि भाई जब ईंधन जल रहा होता है तो वो जलते 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 बिलाखिर ईंधन ने खत्म भी हो जाना होता है, ठीक है, या कम कम होता रहता है, और जैसे जैसे ईंधन कम होता है, फ्यूल कम होता है, तो वैसे वैसे उसकी जो जलने से हरारत और रोशनी पैदा होती है वो भी कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा कोई मामला होगा कि अल्लाह ताला के हुक्म से ये जो सितारे हैं वो बेनूर हो जाएंगे, उनका ईंधन जो है वो खत्म हो जाएगा, या उनका ईंधन इतना कम हो जाएगा कि अब जो है ना वो यानी वो एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकेंगे जिस एनर्जी की जरूरत जो है कायनात को चलाने के लिए थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि सब कुछ जो है वो दरहम बरहम हो जाएगा, ठीक है, जिसकी ये सूरत भी हो सकती है कि ये सब बिल्कुलिया फिना ही हो जाए, या ये कि मौजूद रहें मगर उनका नूर सल्ब हो जाए। इस तरह पूरी दुनिया एक इंतहाई सख्त अंधेरी में गर्क हो जाए, अंधेरा इसको हम कहते हैं, अंधेरे में गर्क हो जाए, ठीक है। तो समहाउ या तो बिल्कुल ही डार्क हो जाएंगे, या ये कि उनका निजाम ऐसा यानी इधर उधर हो जाएगा कि जिसकी वजह से ना वो रोशनी फिर दुनिया तक यानी पहुंच नहीं सकेगी वो रोशनी, तो सब कुछ जो है ना वो फिर अंधेरे में गर्क हो जाएगा। दूसरा हाल ये बयान फरमाया कि आसमान फट जाएंगे, यानी ये जो एक हमें एक छतरी की तरह से एक एक अपने ऊपर एक शेल्टर के तौर पे आसमान नजर आता है ना, जो कि असल में कोई फिजिकल शेल्टर नहीं है कि हम उसके थ्रू जा नहीं सकते, जब जब आपके स्पेसशिप्स रॉकेट्स ऊपर जाते हैं तो वो पहुंच जाते हैं ना बिलाखिर खला के अंदर इस आसमान से गुजरते हुए, लेकिन ये कोई बिल्कुल सॉलिड आसमान तो नहीं है कि जिससे कि टकरा के वो नीचे गिर जाए रॉकेट्स, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं है ऊपर, बहुत सारा मटेरियल ऊपर है, गैसेस इतनी इतनी वो हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं ऊपर जा करके, कि उनके थ्रू ऊपर जाना जो है वो रॉकेट के लिए एक इंतहाई मुश्किल काम होता है, उसको बहुत ज्यादा पावरफुल इंजन्स की जरूरत पड़ती है कि जिसके मदद से फिर वो उन उन, उन लेयर्स के थ्रू गुजर सके। यानी सॉलिड चीजें ऊपर मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन इतनी सॉलिड नहीं है कि जिनके थ्रू बिल्कुल ना गुजरा जा सके, और इतनी हल्की भी नहीं है कि जी जैसे कि गुजरना कोई मुश्किल ही ना हो, ठीक है, जैसे कि बादल, बादल तो बहुत ही नीचे की चीजें हैं, लेकिन बादल का भी क्या मामला है कि जब आप में से जिसने भी प्लेन में सफर किया हुआ है तो वो जानते हैं कि जी जब प्लेन बादलों से गुजरता है तो बादल जो हैं वो अगर इतने सॉलिड होते कि प्लेन उनसे टकरा करके नीचे गिर जाता, ठीक है ना, इतने सॉलिड तो नहीं है लेकिन इतने बिल्कुल ही यानी नॉन एग्जिस्टेंट ऐसे भी नहीं है कि बादल उनमें से गुजर रहा है और कुछ पता ही नहीं चल रहा, बल्कि प्लेन में टर्बुलेंस शुरू हो जाती है, प्लेन हिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी अजीब व गरीब अल्लाह ताला ने चीज बनाई कि ये भी नहीं कह सकते कि बादल पानी है, ठीक है ना, पानी भी होता तो भी इस तरीके से कोई थोड़ी प्लेन जो है वो उसके थ्रू गुजर रहा होता, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने इस तरह की चीजें बनाई हैं। तो ये जो एक आसमान का जो एक लेयर है ये जो है ना वो फट जाएगी, जैसे कपड़ा फटने का लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल होता है, कपड़े के लिए इस्तेमाल होता है, इस तरह की कोई चीज हो जाएगी। तीसरा ये कि पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ते फिरेंगे, ठीक है, ये भी हम अक्सर इसके बारे में बात करते रहे हैं। पहाड़ जो है वो बिल्कुल यानी सूर जब होगी तो सूर फूटने से हर चीज रेजा रेजा हो जाएगी, और रेजा होते होते रेजे यानी सबसे पहले तो बड़े बड़े टुकड़े होंगे, फिर वो टुकड़े जो है वो मजीद छोटे छोटे टुकड़े होंगे, फिर वो मजीद छोटे छोटे टुकड़े होंगे। जैसे कि खवातीन को इससे ज्यादा तजुर्बा भी रहा होगा कि जब बकरईद के अंदर अभी आने भी वाली है, सबके यहाँ गायें दबाओगे इंशाल्लाह, बकरे दबाओगे, तो पहले जो है ना जो कसाई जो बकरे के पीसेस बनाते हैं वो बड़े बड़े पीसेस होते, ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो आप दुकान में लेकर के चले जाते हैं, या इंडिया पाकिस्तान में तो कसाई सारा काम कर लेता है घर के अंदर ही, तो वो बड़े बड़े टुकड़े बनाता है, फिर बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़े बनाता है, फिर उसके बाद जब आप पकाने पर आती हैं किचन के अंदर तो उसको मजीद छोटे छोटे टुकड़े बना देती है, और कभी जो है वो उस मजीद छोटे छोटे टुकड़े को जो है वो कीमा भी बना दिया जाता है, तो कीमा क्या है वो और भी ज्यादा बारीक जर्रात हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये सब ग्रेजुअली हो रहा होता है, स्टेप बाय स्टेप हो रहा होता है, एक ही मरतबा में सारा कीमा नहीं बना दिया जाता, ठीक है। तो उसी तरीके से लगता है कि कयामत के दिन फिर पहाड़ आहिस्ता आहिस्ता होते होते रुई के गालों की तरह से इतने बारीक हो जाएंगे कि उनका कोई वजन ही, एक एक जर्रे का वजन ही खत्म हो जाएगा, और वो डस्ट की तरीके से, हवा मंसूरा, डस्ट की तरीके से जो है ना वो उड़ते फिरेंगे। चौथा, तो चौथा हाल ये बताया गया कि वह इधर रुसुल कहता था, पहला क्या था सितारे फना हो जाएंगे, दूसरा कि आसमान फट जाएगा, तीसरा कि पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ते फिरेंगे, और चौथा हाल कयामत के जो यहाँ पे जिक्र किया है वो है इधर रुसुल उक्के तत। फरमाते हैं उक्के तत तौकीद से मुश्तक है, यानी इसका जो रूट वर्ड है जेरेंट कहते हैं उसको या मस्दर कहते हैं सीना, ठीक है, सदर, सदर सीने को कहते हैं ना, तो सीना जो है ना वो बिल्कुल बुनियादी चीज होती है एक इंसान के जिस्म के अंदर, इसी वजह से जो बुनियादी अल्फाज होते हैं उनको मस्दर कहते हैं अरबी में, तो तौकीद इसका मस्दर है, तो मस्दर से चीजें फिर जो अल्फाज हैं वो मुश्तक होते हैं यानी डिराइव्ड होते हैं, उनसे इश्तिकाक किया जाता है अल्फाज का, तो उक्तत फिर तौकीद से निकला जिसके असली मानी तायीन वक्त और तहदीद वक्त के हैं, वक्त का तायुन और वक्त का की हद बंदी, ठीक है, यानी एक तो होता है ना जी 9 बजे क्लास होगी, ठीक है, तो ये आपने क्लास के वक्त की तायीन कर दी, और एक होता है कि जी क्लास कब से लेके कब तक होगी, ये आपने तहदीद कर दी कि जी 9 से 9:30 तक होगी, ठीक है, तो ये तहदीद कर देना, तो के असली मानी तायीन वक्त और तहदीद वक्त के हैं, और बकौल जमखशरी यानी एक बहुत बड़े मुफस्सिर जिनकी तफसीर ज़मख़शरी जो है वो बड़ी मशहूर है और बड़ा इसके बारे में खैर बड़ी उलमा के नज़दीक ये बड़ी अजीब व गरीब किस्म की तफसीर है ये ज़मख़शरी की, तो उस तफसीर में लिखा है कि कभी इसके मानी किसी मुकर्रर वक्त पर पहुंच जाने के भी आते हैं, कमा फिर रूहल मानी, और ज़मख़शरी की तफसीर को फिर रूहल मानी तफसीर के जो साहिब हैं लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने फिर यानी कोट भी किया है तफसीर ज़मख़शरी को अपनी तफसीर के अंदर कि इसका मानी मुकर्ररा वक्त पर पहुंच जाने के भी आते हैं, ठीक है, कि आप यानी समवन अराइव्ड एट द एग्जैक्ट टाइम, इस जगह यही दूसरे मानी मुनासिब हैं। और मानी आयत के ये होंगे, यानी इस दूसरे मानी ना वक्त पहुंच जाना, तो इस मानी को लेते हुए फिर इस आयत का तर्जुमा किया जाएगा, क्या क्या बनेगा कि अंबिया व रसुल के लिए जो मियाद और वक्त मुकर्रर किया गया था कि उसमें अपनी अपनी उम्मतों के मामले में शहादत के लिए हाजिर हों, वो इस मियाद को पहुंच गए और उनकी हाजिरी का वक्त आ गया। ठीक है, कि उनके हाजिरी का वक्त आ गया जब रसूलों ने हाजिर होना था। ठीक है, वहां पर यानी बकायदा मुकदमा होगा ना कयामत के दिन, तो मुकदमे के अंदर तो भाई फिर दो पार्टीज होती हैं। ठीक है, एक दाई होता है, एक मुद्दई होता है, तो और फिर कोई किसी को गवाह के तौर पर लाया जाता है। तो अल्लाह ताला दाई होंगे, दावा करने वाले, और मुद्दई कौन होंगे, ये हम जैसे लोग जिनको उम्मत ही कहा जाता है, और गवाह कौन होंगे, रसूल जो अल्लाह ताला ने हर उम्मत की तरफ भेजे। ठीक है, तो गवाह आ गए भाई। ठीक है, अब गवाह साहब आ गए, अब मुकदमा जो है ना वो शुरू हो सकता है। तो ये गोया कि उस वक्त होगा। इसीलिए खुलासे तफसीर मजकूर में इसका तर्जुमा अंबिया के जमा करने के साथ किया गया है। आगे कयामत के दिन के अजीम और हौलनाक होने का बयान है कि वो फैसले का दिन है जिसमें मुकज्जिबीन और कुफार के लिए तबाही बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अभी हाल ही में हमने जो तफसीर पढ़ी है गालबन सूरह नमल के अंदर ही, के वहां पर हर उम्मत के जो ना मानने वाले लोग होंगे तो उनको जमा किया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा, और फिर रसूल को भी बुला लिया जाएगा। ठीक है, इज़र रसूल उक़्तत, यानी रसूल भी हाजिर हो जाएंगे। फिर उसके बाद उन उम्मत वालों से पूछा जाएगा कि क्या इन रसूल ने हमारा पैगाम तुम तक पहुंचा दिया। तो जो उम्मती होंगे ना काफिर उम्मती, वो जवाब क्या देंगे कि नहीं, इन्होंने तो अपना काम किया ही नहीं, हमें तो इन्होंने बताया ही नहीं कि क्या क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए और क्या होने वाला है हमारे साथ मरने के बाद, इन्होंने कुछ नहीं बताया। यानी झूठ बोल देंगे उम्मती जो है ना, वो झूठ बोल देंगे कि रसूल ने अपना काम ही नहीं किया। हर रसूल के जो काफिर उम्मती होंगे, एक तो होते हैं ना जिन्होंने रसूल के ऊपर ईमान लिया, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे अपने रसूल के बारे में, लेकिन जो काफिर है वो झूठ बोल देंगे। फिर जो है ना वो अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम की उम्मतियों को उनसे पूछेंगे, ठीक है, कि तुम बताओ कि ये लोग सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। तो इसके ऊपर जो है ना वो जवाब देंगे, यानी नबी अलैहिस्सलाम के मानने वाले उम्मती यानी मुसलमान। ठीक है, अल्लाह करे हम सब उनके अंदर शामिल हो, कि तुम बताओ कि जी इन रसूलों ने पैगाम पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। तो मुसलमान यानी नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी के उम्मती कहेंगे सारे रसूलों ने पैगाम पहुंचा दिया था। तो उसके ऊपर जो है ना फिर वो लोग कहेंगे, यानी पिछले उम्मत जो पिछले रसूलों के उम्मती कहेंगे कि ये लोग कैसे हमारे खिलाफ हमारे बारे में गवाही दे रहे हैं, ये तो वहां मौजूद ही नहीं था, ये तो बाद में पैदा हुए दुनिया के अंदर, बाद में आए ये, इन्होंने तो हमें देखा ही नहीं, तो ये तो गवाह बन ही नहीं सकते, कैसे इन्होंने गवाही दे दी हमारे खिलाफ। तो उसके ऊपर नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत ही कहेंगे कि हम इस बुनियाद पे गवाही दे रहे हैं कि हमारे लिए हमारे रसूल की बात हमारी आंखों देखी बात से ज्यादा अहम है, हम अपनी आंखों पे इतना एतबार नहीं करते जितना हम अपने रसूल की बातों पे एतबार करते हैं, और हमारे रसूल ने हमें बताया था कि हर पिछले रसूल ने अपनी उम्मत को अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, हमें अपनी आंखों पर एतबार नहीं है, हमें रसूल की बात के ऊपर एतबार। ठीक है, यही ईमान होता है। तो फिर उसके बाद जो है ना वो उन उम्मतियों का इसके बुनियादों पर हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। वैलुई यौम इज़्ज़िल मुकज़्ज़िबीन के यही मानी है कि तबाही और बर्बादी। ठीक है, वैल के मानी हलाकत और बर्बादी के हैं, और बाज रिवायात हदीस में है कि वैल जहन्नुम की एक वादी का नाम है जिसमें अहले जहन्नुम के जख्मों की पीप जमा होगी, ये जगह मुकज़्ज़िबीन के रहने की करार दी जाएगी। वैलुल मुकज्जिबीन, और जैसे कि वैलुल हुमजतिल लुमजा, ठीक है, बिल्कुल आखिरी की जो सूरतों में से एक है सूरह लुमजा, इसमें भी यही वैल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। तो इसका एक यानी इसकी एक तफसीर यह है जो कि अहादीस से साबित है कि ये जहन्नुम की एक वादी का नाम है। इसके बाद मौजूदा लोगों को पिछली उम्मतों के हालात से इबरत हासिल करने के लिए फरमाया, अलम नुहलिकिल अव्वलीन सुम्मा नुतबिउहुमुल आखिरी, यानी क्या हमने पहले लोगों को उनके कुफ्र और इनाद की वजह से हलाक नहीं कर दिया? अ का तर्जुमा क्या, लम का मतलब नहीं, नुहलिक क्या हमने नहीं हलाक कर दिया, अल अव्वलीन, अव्वलीन का मतलब जो पहले दुनिया में आए और गुजर गए उनको अव्वलीन कहते हैं, कौम आद व समूद और कौम लूत, कौम फिरौन वगैरह की तरफ इशारा है, ठीक है। और भी बहुत सारी कौमें थी जिनको हलाक किया, अल्लाह ताला ने सारी कौमों को हलाक नहीं किया, बल्कि ये बहुत थोड़ी सी कौमें थी कि जिन्होंने इतनी ज्यादा तकजीब करी कि दुनिया के अंदर ही उनको हलाक कर दिया गया, ठीक है, वरना तो दुनिया के अंदर बेशुमार कौमें गुजरी हैं जिनके साथ ये हलाकत वाला मामला नहीं भी हुआ। फिर उसके बाद सुम्मा नुतबिउहुमुल आखिरी, ठीक है। अब यहाँ पर मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी है कि जिसके ऊपर उनके फर्जंद हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम ने नीचे जो है ना वो नहीं बल्कि बल्कि मुफ्ती तकी उस्मानी उमूमन लिखते तो हैं, लेकिन ये वाले जो है ना ये मोहम्मद अब्दुल्ला, ये कोई और हैं आलिम दीन जिन्होंने कि नीचे एक फुट नोट इसके ऊपर लिखा है, ठीक है। तो वो एक जरा समझाने की चीज है कि हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने यहाँ पे लिखा कि मशहूर व मारूफ किराअत के मुताबिक बे सुकून ऐन अतफ है नुहलिक पर, ठीक है। यानी हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने यहाँ पे लिखते हैं कि ये जो हम जो किराअत यानी जो पढ़ते हैं ना सुम्मा नुतबिउहुमुल आखिरीन, ये ज्यादा मशहूर किराअत इसकी ये है सुम्मा नुतबिउहुमुल आखिरी, नुतबिउ ऐन के ऊपर सुकून जज़म भी कुछ लोग कहते हैं उसको, नुतबिउहुमुल आखिरी, ठीक है। जबकि नीचे फुटनोट के ऊपर जो जो इसके वो हैं बाद में जब ये रीप्रिंट हुई है तो उसमें उन्होंने लिखा है कि इस मुकाम पर हजरत मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह से तसामुह हुआ है। तसामुह का मतलब होता है एक भूल हो जाना, ठीक है, क्योंकि मशहूर मरूफ किराअत सुकून ऐन की नहीं है ज़म्मे ऐन की है, यानी ऐन के ऊपर ज़म्मा पेश, ठीक है, वो मशहूर किराअत है। जैसे कि हम सब वही किराअत पढ़ते हैं कुरान मजीद जो आपके घरों के अंदर है, ठीक है, और पूरी दुनिया के अंदर जो कुरान मजीद राइज है ना, ठीक है, तो उसमें यही है नुतबिउ नुतबिउहुमुल आखिरी, ऐन के ऊपर पेश ज़म्मा, ठीक है। जैसे कि अच्छा तो कुतुबे किराअत के अंदर देखने से ये मालूम हुआ कि ये तसामो जो है ना वो हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह से यहाँ पे हो गया है। तो उन्होंने जो लिखा कि मशहूर मारूफ किराअत जो है वो ऐन पे सुकून के साथ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इससे एक बात तो ये सामने आती है कि भाई यानी एक तो खैर आम बात है कि जो कि सब सबको शायद पता ना हो सुनने वालों को कि कुरान मजीद जो है वो अल्लाह ताला ने कई किराअतों में नाजिल किया है, ठीक है, और ये सारी किराअतें जो है वो महफूज है दुनिया के अंदर, कारियों के जरिए से अल्लाह ताला ने इनको महफूज किया है कि भाई ये ऐसे भी नाजिल हुआ कुरान मजीद, ऐसे भी नाजिल हुआ। तो उन किराअतों के दरमियान इसी तरह के फर्क है, ये किराअतें अलग अलग क्या है, ये डायलेक्ट्स कहलाते हैं, ठीक है, या कुछ जो है ना वो छोटे छोटे अल्फाज के फर्क, ये किस बुनियाद पर है, क्योंकि तो अरब के अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ कबीले थे और हर कबीले का डायलेक्ट जो था ना वो मुख्तलिफ था, वो किसी बात को बयान करने के लिए कुछ मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है, या मुख्तलिफ लहजा इस्तेमाल किया करते थे। तो अल्लाह ताला से नबी अलैहिस्सलाम ने बाकायदा दुआ मांगी थी कि अल्लाह अरब में अरबी जुबान के मुख्तलिफ लहजे राइज हैं, अगर आप सिर्फ कुरैश के लहजे के अंदर कुरान मजीद को नाजिल करेंगे ना तो फिर जो दूसरे लहजे के लोग हैं जो अरब हैं दूसरे लहजे में बात करने वाले उनको कुरान मजीद समझ में नहीं आएगा, या बहुत सारी चीजें जो है ना वो नहीं समझ पाएंगी क्योंकि उनके यहाँ ऐसे बात नहीं की जा रही होती। तो अल्लाह ताला ने बाकायदा अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल करते हुए मुख्तलिफ लहजों के अंदर कुरान मजीद नाजिल किया, ठीक है ना। शुरू में ऐसा रहा कि हर कबीले का अपना लहजा, उसी लहजे में वो कुरान मजीद पढ़ते थे, लेकिन जब इस्लाम दुनिया अरब के अंदर बिल्कुल यानी साबित हो गया और यानी इस्टेब्लिश हो गया ना दीन इस्लाम, और कुरैश को अल्लाह ताला ने जो है वो पूरे अरब के ऊपर हुक्मरानी अता फरमा दी, ठीक है, तो उस वक्त जो है ना फिर एक ही किराअत को जो है वो राइज कर दिया गया, ठीक है। वो क्यों क्यों? इसलिए कि फिर बाकी जो लोग थे वो सब के सब कुरैश के ताबे हो गए। पहले कुरैश के ताबे नहीं थे, कुरैश एक अलग छोटा सा कबीला था, बाकी जो है वो अलग अलग कबीले थे और सब इंडिपेंडेंट थे, कोई एक हुकूमत थी ही नहीं अरब के अंदर। एक हुकूमत तो इस्लाम के आने के बाद बनी है ना, ठीक है। तो एक तो ये कि एक हुकूमत बन गई, सारे कुरैश के ताबे हो गए, ठीक है, उन उस हुकूमत के रियाया बन गए सारे के सारे अरब। तो अब जो है ना वो एक नेशनल लैंग्वेज जिसको कहा जाता है ना, इस मुल्क की जी एक, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया भी है, ठीक है ना, एक नेशनल लैंग्वेज है। हालांकि हर इलाके की अपनी अपनी इलाकाई जुबान है, लेकिन हुकूमत जो है वो नेशनल लैंग्वेज को जो है वो प्रमोट करती है, उससे जो है ना वो एक जिसको कहते हैं मिल्ली यकजहती, ये इस किस्म के बड़े वर्ड्स हमारे यहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना, कौमी वो क्या कहते हैं, हम आहंगी, यकजहती और पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो वो नेशनल लैंग्वेज का इसके अंदर बड़ा अहम किरदार होता है। तो इसी तरीके से एक नेशनल डायलेक्ट सेट हो गया, ठीक है, कुरान मजीद के लिए वो राइज हो गया। इसका मतलब ये नहीं था कि बाकी डायलेक्ट जो है वो दुनिया से फिना हो गए, नहीं, वो तो किताबों में और जो 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 एक्सपर्ट्स थे उन्होंने उसको सीखना जारी रखा, अभी भी जारी है वो, ठीक है। लेकिन अवामुन नास के लिए एक डायलेक्ट जो है वो, एक तरह जो है वो राइज हो गए। अच्छा, दूसरी वजह क्या थी कि बहुत सारे गैर अरब लोग जो हैं वो भी मुसलमान हो रहे थे और उनको भी कुरान मजीद सीखना लाजमी था। कुरान मजीद पढ़ना आना जो है ये तो हर मुसलमान के लिए लाजमी है क्योंकि नमाज फर्ज है और नमाज जो है वो कुरान मजीद पढ़े बगैर हो नहीं सकती, ठीक है। तो अब उनको तो आप मुख्तलिफ डायलेक्ट्स के ऊपर लाना और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उनके लिए। तो एक ही जो है ना वो क़िराअत को राइज किया गया ताकि जो नॉन अरब्स हैं, अजमी लोग हैं, उनके लिए अरबी को सीखना आसान हो जाए, कुरान मजीद को पढ़ना उनके लिए आसान हो जाए, ठीक है। तो ये तो हो गई क़िराअत के बारे में चंद बातें। और दूसरी बात ये है कि यानी तसामुह जो है ना वो हो जाता है, बड़े बड़े उलमाए कराम से भी कभी कुछ गलती हो जाती है। परफेक्शन जो है ना, जिसका मतलब होता है जीरो गलती, ये सिर्फ अल्लाह ताला के साथ है, ठीक है। परफेक्शन इज ओनली विद अल्लाह, ठीक है। इंसानों के साथ तो गलती हो जाती है, अगरचे के जो ज्यादा साहिब इल्म होते हैं और ज्यादा साहिब तकवा होते हैं उनसे गलती जो है वो कम होती है, ठीक है ना, जो और ज्यादा होते हैं उनसे और भी कम होती है, ठीक है ना, लेकिन बिल्कुल गलती से पाक ये तो सिर्फ अल्लाह की जात है ना। तो भाई मुफ्ती शबीर रहमतुल्लाह अलैह ने इतनी बेहतरीन किताब लिखी मारिफुल कुरान, जिससे कि इतने यानी अनगिनत लोग जो है वो दुनिया में फायदा उठाते हैं, इतने तर्जुमे भी इनके उसके हो चुके हैं अंग्रेजी जुबान के अंदर भी और बंगाली जुबान के अंदर भी, और न जाने कितनी जुबान में तर्जुमे हुए हैं। तो इनका तो यानी हम तो तसव्वुर नहीं कर सकते कि इनको कितना सवाब मिलता होगा ना। हर बंदा जो इससे पढ़ता है, सीखता है, समझता है, फिर दूसरों को भी पढ़ाता है, सारा सवाब मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह के नाम आमाल के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो इतनी बेहतरीन खिदमत, लेकिन भाई इंसान इंसानियत से तो नहीं है वो फारिग हो गए थे ना, इंसान तो थे, तो कभी कभी कोई गलती हो जाती है। और भी दो चार जगह हैं जहाँ पे गलतियां इस तरह की, बाद के जो जो उनके स्टूडेंट्स थे, इनके जूनियर्स थे, उन्होंने फिर कुछ गलतियों की निशानदेही करी है। गलती को छोड़ नहीं दिया जाता, ये नहीं कहा जाता कि अच्छा इतने बड़े थे तो हमारे उस्ताद थे और ये थे वो थे, तो अच्छा इनकी गलती को जो है ना वो रहने दो, जाने दो, जाने दो इनकी गलती को, किसी को मत, किसी को मत बताओ, किसी को मत बताओ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इल्म वालों का ये जिम्मेदारी होती है कि गलती की जो है ना, अगर उनको पता चल गया है, अल्लाह ताला ने पता यानी बता दिया है कि हाँ ये तो गलती है, तो अब जो है ना वो उसको उन्होंने रिकॉर्ड करना है, लाजमी रिकॉर्ड करना है, इस वजह से यहाँ पर इसको रिकॉर्ड किया गया है। अच्छा, आखिरी बात इसमें ये कि भाई ये जो सुकून ऐन कफ से जो है ना वो थोड़ा सा मानी के अंदर भी फर्क बनता है, अगरचे के इसका कोई मेजर फर्क नहीं है मानी के अंदर, तो वो क्या है कि अगर सुकून ऐन के साथ इसको पढ़ा जाएगा ना, तो क्या होगा कि हमने अव्वलीन के बाद आखरीन को भी उनके पीछे हलाक नहीं कर दिया। क्या हमने अव्वलीन के बाद आखरीन को भी उनके पीछे हलाक नहीं कर दिया? अलम नुहलिकिल अव्वलीन सुम्मा नुतबिहुमुल आखरीन। ठीक है, इसलिए आखरीन से मुराद भी पिछली उम्मतों ही के आखरीन होंगे जिनकी हलाकत नुज़ूल कुरान से पहले वाकई हो चुकी है। ठीक है, तो जो ग्रामर पढ़ चुके हैं, सर्फ नहा वगैरह से वाकिफ हैं, तो उनको ये बात ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगी कि जो लम है ना, लम नुहलिक पर अप्लाई हो रहा है, तो उससे नुहलिक जो है वो हालत है जज़्म में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद जो सुम्मा आता है, ये सुम्मा जो है वो अतफ के लिए है, और अतफ जब होता है तो उसका क्या फायदा होता है कि पीछे जो आमिल था उसका अमल अतफ के बाद भी अप्लाई होता है। तो लम का जो अमल नोहलिक पर हुआ ना, उसको हालत जज़म में डाल दिया, तो लम का अमल नुतबिह के ऊपर भी हो रहा है, तो उसको भी हालत जज़म में डाल करके वो नुतबिहुमुल आखिरीन बन गया। तो ये सुम्मा हर्फ अतफ की वजह से लम का अमल आगे भी कैरी फॉरवर्ड हो गया, कंटिन्यू हो गया। ठीक है, और इसका मफहूम भी फिर इसी तरीके से बना कि क्या हमने हलाक नहीं कर दिया अवलीन को, और नुतबिहुमुल आखरीन, और जो आखरीन थे उनके बाद जो लोग आए थे उनको भी हमने हलाक नहीं कर दिया। ठीक है, तो हलाकत जो है वो दोनों के ऊपर अप्लाई हो गई। अच्छा, और दूसरी एक किरात में नुतबिहुमुल, जैसे कि हम जो करात पढ़ते हैं मशहूर मारूफ वाली, जो असल में जो मशहूर मारूफ करात है वो क्या है, नुतबिहुमुल बिज़म्मे आयन भी आया है। इस करात पर ये जुमला अलग है। ठीक है, अब इस करात से जब पढ़ेंगे ना, तो क्या होगा कि लम जो है ना वो नुतबिहुमुल के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, जब भी तो वो हालत रफा के अंदर है, वरना वो भी हालत जज़म के अंदर होता है, क्योंकि लम जो है वो एक फेरे मुजारे को हालत जज़म में डाल देता है। माजद के साथ उन लोगों के साथ जो कि ग्रामर से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है। ठीक है, तो इस क़रात पर ये जुमला अलग है, और आखरीन से मुराद उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुफार है। ठीक है, पिछली उम्मतों की हलाकत और अजाब की खबर देने के बाद मौजूदा कुफार अहले मक्का को आइंदा उन पर आने वाले अजाब की खबर देना मकसूद है, जैसे कि गजवाए बदर वगैरह में मुसलमानों के हाथों उन पर अजाब हलाकत नाजिल हुआ। ठीक है, अब जिसको समझ में आ गया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, इतना कोई इस वक्त अभी आप लोगों के लिए अहम नहीं है, आगे चलते हैं। फर्क ये है कि पिछली उम्मतों पर आसमानी अजाब आता था जिससे पूरी बस्तियां तबाह हो जाती थीं। उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ये इकराम खास है कि उनके कुफार पर आसमानी अजाब नहीं आता, बल्कि उनका अजाब मुसलमानों की तलवार से आता है, जिसमें हलाकत आम नहीं होती, सिर्फ बड़े सरकश मुजरिम ही मारे जाते हैं। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत जो है वो पूरी दुनिया पर मुहीत है। ठीक है ना, पिछली जो जो उम्मतें होती थी वो एक खास इलाके तक महदूद होती थी, उनमें जो मानने वाले होते थे अल्लाह उनको बचा लेते थे, और जो नहीं मानने वाले होते थे अगर वो हद से बढ़ जाएं तो आसमानी अजाब आता था और वो सारे ना मानने वालों को खत्म करते रहता। ठीक है, अगर कोई एक भी मानने वाला नहीं है तो सबको ही खत्म कर देता था। ठीक है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की रहमत रहमतुल आलमीन के इस तरह का आसमानी अजाब नहीं आता, किस यानी छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सब के सब खत्म हो जाए, बल्कि बस जो जिहाद के अंदर जिन लोगों से मुसलमानों का वास्ता पड़ता है उनमें से भी जो है वो थोड़े से कत्ल होते हैं, बाकी जो है या तो कैदी बना लिए जाते हैं या बाकी जो है वो मुसलमान हो जाते हैं, तौबा करके मुसलमान हो जाते हैं। तो उनके ऊपर अजाब की जो शक्ल है ना वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा, तो मुसलमान की तलवार से आता है जिसमें हलाकत आम नहीं होती, सिर्फ बड़े सरकश मुजरिम ही मारे जाते हैं। ठीक है ना, बच्चों को मारने से मना कर दिया, औरतों को मारने से नबी अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया। ठीक है, तो सिर्फ जो है वो सरदारे जो लश्कर हो आ गए, देखिए। ठीक है, चले फिर, यहाँ पे टाइम भी मुकम्मल हो गया और अब यहाँ पे हमारे बेटे साथ क्लास भी होने वाली है, तो इस वजह से बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास में जब बुला लें। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।